आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत ने कहा है कि उसे दहशतगर्दी से अपने अवाम का दिफा करने का हक हासिल है और वो उसे इस्तेमाल करेगा। जंगली जानवरों के हमले के सबब फसल को नुकसान पहुंचने और सैलाब से धान की फसल खराब होने को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा। बिहार में कल पटना में एनडीए के 9 मुंतखबा एमएलए अपने लीडर का इंतखाब करेंगे। आंध्र प्रदेश में एक तसादुम में आला कमांडर माधवी हिडमा समेत 6 माओनवाज हलाक हो गए हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमरीका शराकतदारी मजबूत और मुस्तहकम है और ये कलीदी और इक्तिसादी शोबों में वसत पा रही है। और टोक्यो में 25वें डेफ ओलंपिक्स में भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में सोने और कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को हर तरह की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का इजहार करना चाहिए। मॉस्को में शांघाई तावुन तंजीम के सरबराहाने मुमलिकत की मीटिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि हालिया बरसों में दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी की सूरत हाल खराब हुई है और इन खतरात के सिलसिले में कोई जवाज नहीं हो सकता, इनसे दूर नहीं रहा जा सकता और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
SCO का कयाम दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी जैसी तीन लानतों से निमटने के लिए हुआ था। गुज़श्ता बरसों में ये खतरात और भी संगीन हो गए हैं। ये लाजमी है कि दुनिया हर तरह की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का इजहार करे। इसका कोई जवाज नहीं हो सकता, इससे दूर नहीं रहा जा सकता और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि भारत ने दिखाया है कि हमें दहशतगर्दी से अपने अवाम के तहफ्फुज़ का हक हासिल है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे।
वजीर खारजा ने मजीद कहा कि आबो हवा की तब्दीली, वबा और जंग के दौर में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इश्तराक इंतहाई अहम है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि एक मजहब मुमलिकत के तौर पर भारत इस बात में पुख्ता यकीन रखता है कि अवाम से अवाम के राबते किसी भी अहम रिश्ते की बुनियाद होते हैं। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि भारत जुनूब मशरिकी एशिया से वसी एशिया तक विरासत के तहफ्फुज़ के हवाले से अपने वसी तर तजुर्बे को मुश्तरक करने का ख्वाहां है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात में यकीन रखता है कि एससीओ को बदलते हुए आलमी मंजरनामे के तहत खुद को इसके मुताबिक ढालना चाहिए, अपने एजेंडे को तौसी देनी चाहिए और अपने कामकाज के तौर तरीकों में इस्लाहात करनी चाहिए।
सकाफती तबादले के सिलसिले में मुश्तरका सरगर्मियों का हमारा रिकॉर्ड भी लगातार बढ़ रहा है। कई ममालिक में पवित्र बौद्ध बाकियात की नुमाइश इसकी एक नुमाया मिसाल है। भारत विरासत के तहफ्फुज के हवाले से जुनूब मशरकी एशिया से वस्ती एशिया तक अपने वसी तर तजुर्बे को मुश्तरक करने का भी ख्वाहां है।
इस दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने शांघाई तावुन तंजीम की मीटिंग के मौके पर आज मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब फसलों को जंगली जानवरों से हुए नुकसान और धान की फसल के पानी में डूबने से हुए नुकसान का भी इहाता किया जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि नजरसानीशुदा फ्रेमवर्क के तहत फसलों को जंगली जानवरों से हुए नुकसान को मकामी जोखिम के जुमरे के तहत 5वां एड ऑन कवर माना जाएगा, जबकि धान की फसल के डूब जाने को मकामी कुदरती आफत के तहत दोबारा मुतारिफ कराया गया है। वजारत ने कहा कि रियासतें फसलों के नुकसान के लिए जिम्मेदार जंगली जानवरों की फहरिस्त नोटिफाई करेगी और दस्तियाब आदादोशुमार की बुनियाद पर उन जिलों और इंश्योरेंस यूनिट की पहचान करेंगी जिन्हें खतरात लाहक हैं। वजारत ने मजीद कहा कि किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर जियोटैग तस्वीरें अपलोड करते हुए 72 घंटे के अंदर नुकसानात रिपोर्ट करने होंगे। ये फैसला खरीफ 2026 से नाफिजुल अमल होगा। इस तहफ्फुज़ से इंसान और जंगली जानवरों के दरमियान तसादुम से मुतासिरा रियासतों के किसानों को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इन रियासतों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसी हिमालयाई और शिमाल मशरकी रियासतें शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हर एक से जोर देकर कहा है कि वो पानी की दस्तियाबी और इसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने खास तौर पर कहा कि आबोहवा की तब्दीली आज के वक्त में पानी की बिला रुकावट फराहमी पर असरअंदाज हो रही है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक छठे कौमी अवार्ड्स 2024 और जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स अता करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि पानी का मुल्क के लिए किफायती इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि मुल्क में आबादी के एतबार से पानी के वसाइल महदूद हैं।
जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।
सदर जमहूरिया ने ये बात भी खास तौर पर कही कि पानी की बचत से मुतालिक अवामी शराकत दारी के प्रोग्राम के तहत जो पिछले साल शुरू किया गया है, पानी को जेरे जमीन जखीरा करने की 35 लाख से ज्यादा जगह तामीर की गई हैं। जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल, जल शक्ति के वजीर मुमलिकत वी सोमन्ना और राजभूषण चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। ये अवार्ड्स 46 फातिहीन को 10 जुमरों के तहत अता किए गए हैं। महाराष्ट्र ने बेहतरीन रियासत के जुमरे में पहला मकाम हासिल किया है, जबकि गुजरात और हरियाणा दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार में एनडीए की 9 मुंतखब अरकान असेंबली अपने लीडर के इंतखाब के लिए कल पटना में एक मीटिंग करेंगे। 5 हलीफ जमातों बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से ताल्लुक रखने वाले एनडीए के 202 अरकान असेंबली इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तवक्को है कि बिहार में एनडीए कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर वजीर आला नीतीश कुमार एक बार फिर मुंतखब हो सकते हैं। इसके बाद एनडीए कानून साज पार्टी के लीडर रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने का दावा करेंगे। इससे पहले बीजेपी और जेडीयू अलग अलग मीटिंगों में अपने कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब करेंगे। ये मीटिंगें भी कल मुनाकिद होने का इम्कान है। वहीं हुकूमत के ढांचे, काबीना के साइज और मुख्तलिफ हलीफ जमातों के दरमियान वजारती ओहदों की तकसीम को लेकर एनडीए की दो बड़ी पार्टियों बीजेपी और जेडीयू के दरमियान बातचीत जारी है। पटना के तारीखी गांधी मैदान में हलफबरदारी की तकरीब से मुतालिक तैयारियां जारी हैं। ये तकरीब जुमेरात को मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीजेपी की क्यादत वाली रियासतों के वजराए आला और सीनियर एनडीए लीडर नई हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। इसी दौरान रियासती काबीना ने 17वें कानून साज असेंबली को कल बुध के रोज तहलील किए जाने की सिफारिश पेश की है। इम्कान है कि वजीर आला नीतीश कुमार कल ही अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंपेंगे, जिसके बाद वो नई हुकूमत की तश्कील का दावा कर सकते हैं। वहीं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य को बिहार में कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए मरकजी मुशाहिद के तौर पर नामजद किया है। वहीं कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल और साबिक मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति को भी मुआविन मरकजी मुशाहिदीन के तौर पर नामजद किया गया है। इन नामों की मंजूरी बीजेपी पार्लियामानी बोर्ड की जानिब से दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
बिहार में एनडीए हुकूमत के कयाम से पहले कल का दिन काफी अहम होगा। वजीर आला नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा पेश करने के बाद गवर्नर के सामने नई हुकूमत के कयाम का दावा पेश करेंगे। इस दौरान वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान के साथ तारीखी गांधी मैदान का दौरा किया और 20 नवम्बर को होने वाली हलफबरदारी तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
इंतखाबी कमीशन ने आज इत्तला दी है कि खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR के दूसरे मरहले के आगाज से अब तक 50 करोड़ 97 लाख से ज्यादा ज्याती मालूमात से मुतालिक फार्म राय दहिंदगान में तकसीम किए जा चुके हैं। ये तादाद इस मरहले में इहाता किए जाने वाले कुल 51 करोड़ राय दहिंदगान का 98.54% है। نو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام تین علاقوں میں 4 نومبر سے انتخابی فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی مہم کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ انتخابی کمیشن نے مزید کہا کہ اتر پردیش میں 15 کروڑ سے زیادہ جبکہ مغربی بنگال میں 7 کروڑ سے زیادہ ذاتی معلومات سے متعلق فارم سونپے گئے ہیں۔ انتخابی فہرستوں کی بڑے پیمانے پر نظر ثانی کا کام 7 فروری 2026 کو حتمی ووٹر فہرست کی اشاعت کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کا دورہ کریں گے۔ آندھرا پردیش کے دورے میں وہ پٹا پارتھیو میں بھگوان سری ستیہ سائی بابا کے مندر اور ان کی مہا سمادھی پر پوجا ارچنا کریں گے۔ وزیر اعظم بھگوان سری ستیہ سائی بابا کی 7 سالہ تقریبات میں بھی شرکت کریں گے اور وہ اس موقع پر ان کی زندگی، تعلیمات اور وراثت کی یادگار کے طور پر ایک سکہ نیز ایک ٹکٹ بھی جاری کریں گے۔ وہ پروگرام کے دوران ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ بعد میں وہ تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور جائیں گے جہاں وہ جنوبی بھارت کی قدرتی کھیتی باڑی سے متعلق کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ماؤ نواز مخالف کاروائیوں میں اہم پیش رفت کے تحت ٹاپ کمانڈر مادھوی ہرما سمیت 6 ماؤ نواز مارے گئے۔ آندھرا پردیش کے الوری سیتا رامراجو ضلع میں آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ اور اڈیشا ریاستوں کے سہرخی جنکشن پر میئر ڈوملی جنگلوں میں صبح صادق سے پہلے یہ مٹ بھیڑ ہوئی۔ آندھرا پردیش کے ڈی جی پی ہریش کمار گپتا نے بتایا کہ گروپ کی نقل و حرکت سے متعلق انٹیلیجنس کی معتبر اطلاع ملنے کے بعد یہ تصادم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ مٹ بھیڑ کے دوران کوئی سلامتی اہلکار زخمی نہیں ہوا ہے۔ مٹ بھیڑ کے مقام سے AK-47 رائفلز اور دھماکہ خیز مادہ ضبط کیا گیا ہے۔ سلامتی دستوں نے میر ڈوملی، وجے واڑہ، NTR اور کاکی ناڑا ضلعوں میں تلاش کی کاروائی تیز کر دی ہے۔ حکام نے بتایا کہ یہ کاروائیاں سال 2026 تک ماؤ نوازوں کے بقیہ ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے مرکزی حکومت کے مشن کا حصہ ہیں۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کی ساجیداری مضبوط اور مستحکم ہے اور اسٹریٹجک اور اقتصادی شعبوں میں وسعت پا رہی ہے۔ نئی دلی میں آج بھارت امریکی چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تشویش کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستی، جمہوریت، گوناگونیت اور مشترکہ ترقیاتی ویژن کے مضبوط ستون پر قائم ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ مذاکرات ایک لگاتار چلنے والا عمل ہے اور بھارت کو اپنے کسانوں، ماہی گیروں، چھوٹی صنعتوں اور کاروبار کے جذبات کے درمیان توازن قائم رکھتے ہوئے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت پچھلی دہائی میں دنیا کی 5 کمزور معیشتوں سے نکل کر سر فہرست 5 معیشتوں میں شامل ہو گیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت سال 2027 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج نئی دلی میں آئندہ مرکزی بجٹ 2026-27 کے سلسلے میں مینوفیکچرنگ کے شعبے سے وابستہ ماہرین اور صنعتکاروں کے ساتھ بجٹ سے پہلے کے 6ٹے صلاح و مشورے کی صدارت کی۔ نشانے بازی میں بھارت نے جاپان کے ٹوکیو میں ڈیف اولمپکس 2025 میں 10 میٹر کے ایئر رائفل مکسڈ ٹیم مقابلے میں 2 تمغے جیتے ہیں۔ دھنو شری کانت اور مہیت سندھو کی جوڑی نے جنوبی کوریا کی جوڑی کو 17-7 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ وہیں محمد وانیا اور کومل واگماری کی جوڑی نے یوکرین کی جوڑی کو 16-12 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے کہا ہے کہ اسے دہشت گردی سے اپنے عوام کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ اسے استعمال کرے گا۔ جنگلی جانوروں کے حملے کے سبب فصلوں کو نقصان پہنچنے اور سیلاب سے دھان کی فصل خراب ہونے کو پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت شامل کیا جائے گا۔ بہار میں کل پٹنہ میں NDA کے 9 منتخبہ MLA اپنے لیڈر کا انتخاب کریں گے۔ آندھرا پردیش میں ایک تصادم میں اعلی کمانڈر مادھوی ہرما سمیت 6 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ شراکت داری مضبوط و مستحکم ہے اور یہ کلیدی اور اقتصادی شعبوں میں وسعت پا رہی ہے۔ اور ٹوکیو میں 25ویں ڈیف اولمپکس میں بھارتی نشانے بازوں نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا اور کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔